चैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सबकी तबीयत ठीक है, और आप ऐसे जिन भक्तों की तबीयत ठीक नहीं थी, आशा करते हैं कि आप शीघ्र आते शीघ्र ठीक हो जाएं, और हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पुनः मैं सारे भक्तों से निवेदन करता हूं कि सारे जगत के लिए हम प्रार्थना करें कि सारा जगत जो है ये भगवान कृष्ण के पथ पे चले आए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन शैली को अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए आहार आदि का पालन करें। अभी बहुत सारे चर्चाएं जगह जगह चल रही हैं अभक्तों के बीच में कि आहार एक बहुत बड़ा विषय है, और ऐसा नहीं है कि पहले जैसे लोग कहते थे कि मैं जो खा रहा हूं वो केवल मेरी समस्या है, मैं मन में जो आए वो खाऊं, और किसी को अधिकार नहीं है मुझे कहना कि मैं क्या खाऊं या नहीं खाऊं। परंतु आज हम देख रहे हैं कि हमारे खाने की जो आदतें हैं उनका प्रभाव सारी दुनिया पे भी पड़ता है। तो मैं ऐसी प्रार्थना करें कि ऐसे एक जानकारी एक श्रद्धा लोगों के मन में आए कि वो इस तरह का मांसाहार करना, चाहे जंगली जानवरों का हो या चाहे पालतू जानवरों का हो, उनकी हत्या करना वो बंद कर दें और भगवान के भक्ति के रास्ते को चुने। और खास करके जो हमारे भक्त लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं उनके लिए भी, और साथ साथ हमारे जो भक्त हैं जो बीमार हैं विशेष रूप से इंग्लैंड में यूके में, उनके लिए अवश्य प्रार्थना करें। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सावधानी अवश्य आप सब रख रहे हैं, परंतु जब भी आपको बाहर जाना पड़े नहीं जाइए, परंतु यदि जाने की आवश्यकता पड़े, आपको कोई सब्जियाँ खरीदनी है, कोई दवाइयाँ खरीदनी है, कोई आवश्यक काम से आपको जाना है, तो आने के बाद अवश्य हाथ इत्यादि धो लीजिए, स्नान कर लीजिए, कपड़ों को अलग तरह से धो लीजिए, और अपने मुख पे मास्क पहन लीजिए, कपड़ा आप डाल दीजिए। मास्क तो मिलते हैं, यदि आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो अच्छे कपड़े कोई लेकर आप मुख और नाक को आप ढक लीजिए बाहर जाते समय। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे अवश्य इसको याद रखिए, आप इसको पहन लीजिए, ठीक है। तो और निराश नहीं होइए, भयभीत नहीं होइए, सावधानी रखिए, परंतु भगवान कृष्ण के ऊपर भरोसा करके हमें उत्साह से आगे चलना है। और इस सब संसार में समस्याएं आएंगी जाएंगी, भगवान ने सृष्टि की रचना ऐसे ही की है तो ये होगा। तो इसलिए कृपया आप थोड़े सकारात्मक भाव को रखिए, आशापूर्ण हृदय बनाए रखें। और चलिए अभी हम आगे चर्चा करते हैं तिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कही हुई लघु कथाएं और उनसे हम क्या शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। उपाख्याने उपदेश। तो अब जो कथा हम बताने जा रहे हैं वो है, इसका शीर्षक है गीता के लिए एक परिवार। हुआ ये कि एक आश्रम था, उसमें एक महात्मा रहते थे। उनका केवल एक शिष्य था। तो एक बार महात्मा जी ने सोचा कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, और उन दिनों में तो तीर्थ यात्राओं के लिए कोई साधन ऐसे नहीं होते थे जैसे आज उपलब्ध हैं। गाड़ियां हैं आजकल, रेलगाड़ी है इत्यादि, परंतु तो उस समय चल के जाना पड़ता था। तो उनको बहुत दूर जाना था और अनेक स्थानों में जाना था, इसलिए वो जानते थे कि मुझे लौटने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे। तो उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि देखो, मैं थोड़े वर्षों के बाद यहाँ लौट कर आऊंगा, और इस दौरान तुम यहीं पे रहना, अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करना, और ये भगवद गीता मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको रोज पढ़ा करो। और फिर महात्मा निकल गए। तो उनका जो शिष्य था वो विंध्याचल में, विंध्या पर्वत के एक गुफे में वो रहता था। वहाँ गुफे में रहकर वो तपस्या करता था और रोज भगवद गीता पढ़ता था, जैसे कि उसके गुरु ने आदेश दिया था। तो हुआ ये कि उस गुफे के अंदर एक चूहा आता था, और वो चूहा कभी कभी जाके उस भगवद गीता के प्रति के जो ग्रंथ के कागज को कभी कभी खा लेता था, चूर चूर कर टुकड़े कर देता था। तो इसको देखकर बड़े हैरान हो गया ये शिष्य कि क्या करना चाहिए, चूहे को कैसे दूर रखें, एक ही प्रति है मेरे पास भगवद गीता की, एक चूहा खा लेगा तो कैसे होगा। तो फिर उसने सोचा कि हाँ, एक उपाय है, और मुझे एक बिल्ली रखनी होगी। मैंने बिल्ली रखी तो फिर चूहा उसके डर से दूर रहेगा। तो कहीं से उसने एक बिल्ली ला के रख दी अपने गुफे में, तो चूहे की समस्या तो ये मुक्त हो गए, परंतु अब समस्या ये हुई कि बिल्ली को खिलाना पिलाना पड़ा, और आप तो जानते हैं कि बिल्ली को दूध पसंद होता है। यदि कोई बिल्ली को पालते हैं तो दूध पिलाना आवश्यक होता है, तो बिल्ली को दूध कहाँ से पिलाएं? तो बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय चाहिए जो कि दूध देगी। तो दैव से हुआ ये कि किसी पास वाले गांव में एक कोई सज्जन रहते थे, दानी व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक गाय दान में दे दी इनको। तो गाय का पालन करने लगे। अब गाय का पालन करना ये कोई आसान बात नहीं है, जैसा आप सब जानते हैं। सुबह से रात तक गाय का देखभाल करना पड़ता है, चारा देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, और फिर उसके लिए कोई रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो स्वयं परिश्रम करके इस शिष्य ने एक गौशाला का निर्माण किया। तो बहुत परिश्रम करना पड़ा, काफी समय लगा, क्योंकि अकेला था वो। तो उसने तो सब कुछ बना दिया, गाय को रहने के लिए व्यवस्था कर दी, परंतु गाय को खिलाने पिलाने के लिए और उसकी रक्षा के लिए उसे इतना दिन रात परिश्रम करना पड़ा कि उसने सोचा कि भाई, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है मेरी साधना के लिए। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे भगवद गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन ये गाय के पीछे जाते जाते फिर मुझे भोजन भी पकाना है, बहुत कुछ करना है, तो गाय बिल्ली का भी देखभाल करना है, तो मुझे एक व्यक्ति को रखना चाहिए यहाँ पर जो कि इस गाय का देखभाल करेगा। परंतु कोई गौ सेवक यदि मैं लेके आऊं यहाँ पे, उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, फिर ये सब पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? फिर मुझे काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, व्यवसाय करना पड़ेगा, ये भी और बड़ी समस्या है। तो बहुत गहरी सोच में पड़ गया और काफी देर के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए ताकि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो विवाह कर ली। अब जब विवाह कर लिया तो पत्नी घर में आ गई, तो फिर अभी संसार बसाना था, तो फिर बहुत सारी चीजें आ गई। धीरे धीरे से अभी एक क्षेत्र तो था, परंतु अब घर बनाना पड़ा। गाय के लिए तो घर बना दिया, लेकिन अभी अपने परिवार के लिए तो घर बनाना था। पत्नी के साथ तो गुफे में नहीं रह सकते थे, तो फिर घर बनाना पड़ा, फिर घर को चलाने के लिए कोई व्यवसाय करना पड़ा। इस तरह से ये व्यक्ति व्यवसाय में लग गए, खेती करने लग गए, बहुत ऐसे कार्यों में लग गए। और जैसे जैसे समय बीतता गया, धन इकट्ठा होने लगा, और 2-4-5 साल बीत गए और ये व्यक्ति बहुत धनी हो गया। फिर उसने सोचा, ये छोटे से घर में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, अब मैं इतना धनी बन गया हूँ तो मुझे बड़ा घर बनाना चाहिए। तो उसने फिर एक बहुत बड़ा घर बनाया, एक महल के बराबर था वो घर। तो उस घर को, महल को बांधने के लिए भी कितने पैसे खर्च करने पड़े, फिर इतना परिश्रम करना पड़ा, दिन रात का निरीक्षण करना पड़ा, और फिर घर के अंदर सामान रखने के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदनी पड़ी, बनवाने पड़ी, तो इतना सब करना पड़ा। और ये संसार के वस्तुएं जो हैं, ये बढ़ती गई बढ़ती गई, और फिर पूरा संसार बस गया। ऐसे कई साल बीत गए। एक बार वो महात्मा अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करके फिर से आ गए उसी स्थान पे अपने शिष्य के खोज में। वो देखना चाहते थे कि मेरा शिष्य कैसे है। तो जैसे ही उसी स्थान में आया जहाँ शिष्य पहले रहा करता था, तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, यहाँ पे इतना बड़ा महल है और गौशाला है, और महल के अंदर भी इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं और रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, ये सब चमक धमक इतना है यहाँ पे, मेरा शिष्य कहाँ गया। और फिर देखा कि वो शिष्य बाहर आया, गुरुदेव आप आ गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो गुरु हैरान हो गए, भाई ये क्या हो गया, जब मैं गया था तो एक तुम्हारे पास कोई कुआं था, गुफा था, गुफे में रहा करते थे तुम, अब ये क्या सब हो गया। तो शिष्य ने जवाब दिया कि देखिए, आपके भगवद गीता के लिए ये परिवार है, आपके गीता के लिए ये सब हो गया। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कहानी से बताना चाहते थे कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, चाहे हम ब्रह्मचारी हों, गृहस्थ हों, वानप्रस्थ हों, सन्यासी हों, जो भी हम हों, हमारे आवश्यकताओं को हमें बढ़ाते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसार में रहते हुए ये एक स्वाभाविक इच्छा लोगों की रहती है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसको योग और क्षेम कहते हैं। तो योग का मतलब है प्राप्त करना, तो मन चाहता है कि ये भी प्राप्त करूं, वो भी प्राप्त करूं, और जितना भी हम प्राप्त करते हैं वो कम लगता है, फिर और भी चाहिए होता है, और ऐसे ये निरंतर परिश्रम चलता है चीजों को इकट्ठा करने के लिए, और चीजों का, वस्तुओं का संग्रह करने के लिए, धन का संग्रह करने के लिए। और फिर जब ये चीजें आती हैं तो उनका संरक्षण भी करना पड़ता है, तो उनकी रक्षा करना, उसको क्षेम कहते हैं। तो ये योग और क्षेम के चक्र में हम सब पड़े हुए हैं। तो भक्त को चाहिए कि वो योग क्षेम के चक्र में बहुत पूरी तरह से फंस नहीं जाए। अवश्य भक्त की भी कोई आवश्यकताएं होती हैं, और जो भी चीजें भक्तों के पास हैं, भक्तों का कर्तव्य है कि वो उनकी रक्षा करें। जैसे कोई भक्त आश्रम में रहते हैं तो आश्रम की बहुत सारी चीजें यहाँ वहाँ पड़ी हुई होती हैं, तो भक्त को देखना चाहिए कि आश्रम से कोई व्यक्ति आके चोरी करके कुछ उठा के ले ना जाए। कोई गृहस्थ भक्त है तो उसे भी चाहिए कि वो अपने घर की, अपने परिवार की, अपने वस्तुओं की रक्षा करे। तो भक्तों के लिए भी योग क्षेम होता है, परंतु जो भक्त होते हैं और जो भक्त नहीं होते हैं, उनमें में अंतर ये होता है कि जो अभक्त होते हैं वो साधारणतः वो योग क्षेम में ज्यादा लगे हुए होते हैं, दिन रात योग और क्षेम के पीछे ही लगे हुए होते हैं, इसलिए चिंता से ग्रस्त होते हैं दिन रात, और इसलिए चिंतित रहते हुए उनके उनकी चिंताओं की कोई सीमा नहीं रहती है। तो उधर जो भक्त होते हैं वो श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी प्रेममयी सेवा करता है, तो उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं मैं उनको पूर्ण करता हूँ, और उसके पास जो भी कुछ है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। तो भक्तों के मन में भगवान के इस वचन के प्रति पूर्ण भरोसा होता है, विश्वास होता है, इसलिए वो केवल दुनियादारी में भरोसा नहीं रखते, दुनिया के परिस्थितियों में बह नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, हम जब तक दुनिया में हैं, जब तक ये भौतिक शरीर हमारे पास है, हमें इसके भरण पोषण के लिए कार्य अवश्य करना चाहिए, परंतु अति नहीं करना चाहिए, हमें इतना इन चीजों में मग्न नहीं हो जाना चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए समय नहीं मिल जाए, या कोई शक्ति या मानसिक ताकत न रह जाए, यह हमारा जो एक झुकाव है आध्यात्मिकता के प्रति वो कहीं नष्ट ना हो जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, इसे कहते हैं यावन निर्वाह परित्रह। जब हम अपने निर्वाह के लिए कोई चीजों को इकट्ठा करते हैं, पैसे कमाते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं, तो वो केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम शरीर और आत्मा को बनाए रखना चाहते हैं, हमें इसलिए कहना करना चाहिए ताकि हमारी भक्ति सुरक्षित रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, और इसी बात को श्रील जीव गोस्वामी भी दोहराते हैं उनकी भक्ति रसामृत सिंधु की टीका। वो कहते हैं कि जब हम सरल जीवन ऊंचे विचार की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि कम से कम चीजों का संग्रह करो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक व्यक्ति को केवल इतना ही खाना चाहिए जिससे कि शरीर और आत्मा बनी रहे, उसको स्वस्थ भी होना चाहिए और उसे इस काबिल भी होना चाहिए कि वो भगवान की सेवा कर सके। और देखिए, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो जो एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त है वो हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए कम हो या अधिक हो। जैसे समझ लीजिए एक वृद्ध व्यक्ति है, तो उनको उनका जो भोजन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, बूढ़े लोग नहीं खा पाते हैं, पाचन शक्ति नहीं है, इच्छा भी नहीं होती उनको और ना ही उनको आवश्यकता होती है, परंतु जो एक जवान व्यक्ति है उसको तो बहुत खाना पड़ता है वृद्ध व्यक्ति की तुलना में। तो यदि हम ये उनसे कहें कि देखो तुम्हें योग क्षेम वहां यहां कृष्ण के ऊपर निर्भर होना चाहिए, तो केवल शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए तुम कम से कम जितना चाहिए उतना खाना, केवल जीवित रहो, देखो ये वृद्ध व्यक्ति है कितना कम खा रहे हैं, तुम इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो, तो ये तर्क नहीं चलेगा, क्योंकि जो जो युवक है उसकी परिस्थिति अलग है, जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी परिस्थिति अलग है, इसलिए अपने अपने परिस्थिति के अनुसार हमें देखना चाहिए, हर एक व्यक्ति देश काल पात्र के अनुसार देखना चाहिए कि हमें क्या आवश्यक है। कभी कभी जब हम स्थान बदलते हैं, ये पात्र की बात हुई, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति है एक जवान व्यक्ति, फिर कभी कभी स्थान की बात आती है, हमारे कई भक्त कभी कभी सफर करते हैं, कभी अपने नौकरी के लिए व्यवसाय के लिए या कभी प्रचार के लिए इधर उधर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, और कभी कभी रेलगाड़ी में यहाँ वहाँ सफ़र करना पड़ता है, तो हमारे भक्त लोग तो बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसलिए फिर वो अभी स्थान कुछ अलग हो गया, अभी हम घर में नहीं हैं, आश्रम में नहीं हैं, तो फिर क्या करें? तो घर से आश्रम से थोड़ा कुछ लेके जाते हैं, जितना समय तक वो चले चला लेते हैं काम, उसके बाद फिर क्या करते हैं, थोड़ा कुछ फल फूल ले लेते हैं यहाँ वहाँ से, और उससे थोड़ा अपना निर्वाह कर लेते हैं, भरण पोषण कर लेते हैं शरीर का। तो जब हम अलग अलग स्थानों में रहते हैं तो अलग अलग तरह से हम भोजन लेते हैं। जब हम किसी गांव में जाते हैं, भारत के किसी छोटे गांव में गए, किसी के घर में गए प्रसाद के लिए, और हमने अपेक्षा की यहाँ हमको पिज्ज़ा मिलनी चाहिए, पास्ता मिलना चाहिए, हाँ, तो ये कैसे होगा भाई? वो अपनी दाल रोटी जो है प्रेम से बनाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, हमें दे देंगे, वो तो हमें प्रेम से खा लेना चाहिए। उसी तरह से हम यदि कहीं दूसरे जगह जाएं जहाँ वो अलग तरह का भोजन बनाए, तो ठीक है, हम उस तरह का भोजन खा लेंगे। स्थान का भी महत्व होता है, परिस्थिति का भी महत्व होता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब कोई विशेष पथ्य का पालन करना पड़ता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये कम खाना चाहिए, तले हुए चीज़ें नहीं खानी चाहिए, या मीठे वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, या कभी कभी जो कमज़ोर होते हैं उनको कहते हैं कि आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। तो परिस्थिति के हिसाब से भी हम अलग अलग चीज़ों को खाते हैं, इसलिए एक ही मापदंड सबके लिए नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने अपने परिस्थिति में, अपने अपने आवश्यकताओं के अनुसार हमें देखना चाहिए कि मुझे भोजन कितना चाहिए, मुझे कपड़े कितने चाहिए, मेरा घर कैसे होना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी के पास गिने चुने धोती कुर्ता वगैरह होते हैं बस, तो गमछा ये सब होता है, परंतु जो व्यक्ति जो बहुत बड़े व्यापारी हैं या बहुत बड़े कंपनी में उच्च पद पर अधिकारी हैं, तो उनको यहाँ वहाँ जाना होता है मीटिंग में, कभी कभी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सूट टाई पहन के जाना पड़ता है। तो उससे हम जाके कहें कि प्रभु जी, आप तो केवल धोती कुर्ता ही रखिए, ये सब सूट पैंट वगैरह क्यों पहन रहे हैं आप? तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए जो अपनी नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, उसके लिए ऐसे कपड़े उनको पहनना आवश्यक होता है, तो वो पहन लेते हैं। तो हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है, परंतु हमें नकल दूसरे की नहीं करनी चाहिए। यदि हमारी परिस्थिति उनके जैसे न हो तो हमें उनकी तरह कार्य नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे एक एक बार हम ब्रह्मचारी लोग बैठ रहे थे तो प्रसाद ले रहे थे, एक भक्त बहुत ज्यादा, बहुत पहले की बात है, अभी याद आ रहा है मुझे, तो एक ब्रह्मचारी की आदत थी बहुत ज्यादा वो खाता था। तो सारे भक्तों ने कहा, भाई प्रभु इतना मत खाना। तो प्रसाद लेते समय ये चर्चा एक बार हो रही थी, तो फिर वो ब्रह्मचारी ने कहा कि देखो भीम कितना खाते थे, भीम तो बड़े भक्त थे ना, तो भीम के बारे में कभी कुछ कहते हो क्या? तो भीम ने भी अच्छा खाया, मैं तो भीम की तरह तो नहीं खा रहा, फिर भी खा रहा हूँ जो आवश्यक है। तो दूसरे भक्त ने कहा कि देखो भीम की तरह खाना है तो भीम की तरह कर्म भी करने चाहिए, हाँ, भीम की तरह कार्य नहीं करोगे हाँ तो फिर क्या फायदा, उस तरह से खाना नहीं चाहिए। बिग बिग मंकी बिग बिग बेली सिलोन जंपिंग मेलनपली, ये प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये कहावत है अंग्रेजी में, ऐसे साधुओं की टीका करते थे वो, जो कि केवल दाल रोटी मुफ्त में कमाने के लिए, बिना कोई परिश्रम किए, बिना नौकरी व्यवसाय के लिए एक साधु का जीवन अपनाते हैं और थोड़ी भिक्षा ले लेते हैं और आराम से रहते आते हैं, तो लेकिन कभी कोई परिश्रम नहीं करते, कोई सेवा नहीं करते, कोई प्रचार नहीं करते। तो ये कहावत का मतलब है बिग बिग बेली, कि खा खा कर बिना परिश्रम किए पेट बड़ा हो जाता है, तो हो जाता है उसके लिए। लेकिन जब सिलोन जंपिंग, जब हनुमान जैसे कार्य करने की बात आ जाती है, जैसे हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर छलांग मार दी और श्रीलंका लंका पहुंच गए, जो सिलोन के नाम से जाना जाता था पहले भी। तो जब ऐसे हनुमान की तरह कोई सेवा करने की बात आती है तो मेलनकली, तो उदास हो जाते हैं। तो केवल ऐसा कि हम प्रसाद मुफ्त में ग्रहण करें पर हम तो सेवा नहीं करें, परिश्रम नहीं करें, प्रचार नहीं करें, नहीं, ऐसे नहीं चलता है। हर एक की परिस्थिति अलग अलग होनी चाहिए और उस परिस्थिति के अनुसार हमें चीजों को ग्रहण करना चाहिए। वैसे इस सिद्धांत को युक्त तो वैराग्य कहते हैं। श्रील भक्ति श्रील रूप गोस्वामी ने इस श्लोक को कहा है, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो युक्तम वैराग्यम उच्यते, जो युक्त तो वैराग्य है, जो परिपूर्ण वैराग्य है, जो बिल्कुल सही प्रकार का वैराग्य है, वो क्या है वो वर्णन करते हैं। सबसे पहली बात, अनासक्तस्य विषया, जो संसार के विषय हैं उनके प्रति हमें अनासक्त रहना चाहिए। दूसरी बात, यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे, और वस्तुओं का अर्थात जो संसार में वस्तु पाए जाते हैं उनका प्रयोग हमें करना चाहिए श्री कृष्ण के संबंध में, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण की सेवा के लिए। और इस तरह से जब हम इस संसार के वस्तुओं का प्रयोग अपने लिए न करके हम श्री कृष्ण के लिए करते हैं तो फिर ये युक्त वैराग्य कहलाता है। जैसे ईश उपनिषद में भी कहा गया है ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां विदः कस्य चित्तनम्। ये सारी संपत्ति भगवान की है, हमारा कुछ भी नहीं है, परंतु हमारे लिए भगवान ने कुछ छोड़ रखा है, अंग्रेजी में कोटा कहते हैं। तो हमारा जो अधिकार है, हमारा जो भाग है, भगवान ने हमारे लिए दिया है, जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें प्राप्त होता है। हमने यदि किसी गरीब गरीब परिवार में जन्म लिया है और किसी दूसरे व्यक्ति ने धनी परिवार में जन्म लिया है, तो उसे उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि मैं गरीब हूँ, वो धनी है, ऐसा क्यों है, उसके पास इतनी सुविधाएं हैं और मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो बात यह है कि उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको वैसी परिस्थिति प्राप्त हो गई है और मुझे मेरे प्रारब्ध के अनुसार ऐसी परिस्थिति प्राप्त हुई है। तो जिस परिस्थिति में भगवान हमें रखते हैं उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हमारे परिस्थिति में जो भी हमारे पास है, भले वो कम हो या अधिक हो, हमें भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं कि भक्ति के रास्ते में हमें मध्यम मार्ग स्वीकार करने कर लेना चाहिए। जो युक्तम वैराग्यम है इसको और थोड़ी गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये सरल जीवन उच्च विचार है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इस सूत्र को प्रभुपाद जी बार बार दोहराया करते थे। तो श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव गीता के अंतर्गत उद्धव से कहते हैं, यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान, और न निर्वण्णो नाति सत्तो भक्ति योगस्य सिद्धतः। वो कहते हैं कि भक्ति योग अस्य सिद्धिदः। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जी भक्ति जो कि भक्ति योग में सिद्धि या सफलता प्राप्त करने के लिए योग्य है? पहली बात, यदृच्छया मत कथा श्रद्धा, जात श्रद्धा मत कथा दो, जात मतलब उत्पन्न हुआ, मत कथा दो मतलब मेरे श्री कृष्ण बात कर रहे हैं ना, तो मेरी कथाओं में आदि, मेरे कथा में, मेरे नाम में, मेरी सेवा में इत्यादि, जिसके मन में रुचि उत्पन्न हुई हो, श्रद्धा उत्पन्न हुई हो, तो ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? यदृच्छया, बहुत ऊंचे भाग्य से। ये कोई साधारण भाग्य नहीं है, ये भक्त्योन्मुखी सुकृति है। वो सुकृति, वो पुण्य जो हमारे पूर्व जन्मों के भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है हमें इस जीवन में, स्वाभाविक रूप से हमें हम भक्तों की ओर चले जाते हैं। परिस्थिति कुछ ऐसे बन जाती है कि भक्तों के बीच में हम आ जाते हैं, फिर भक्ति करने की श्रद्धा या जो झुकाव है वो भी उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहली योग्यता ये है भक्ति योग में सफलता प्राप्त करने के लिए, कि हमारे अंदर वो पूर्व जन्मों की सुकृति होनी चाहिए, जिसके द्वारा भगवान के कथा आदि के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो। और ये सब तो भक्तों के संग से होता है, तो जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं तो वैसे वैसे ये श्रद्धा अपने आप उत्पन्न होती है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग स्यात् भजन क्रिया। तो थोड़ी सी जो श्रद्धा है जो कि पूर्व जन्मों से प्राप्त हो चुकी है हमें यदृच्छया, उसके द्वारा हम भक्तों के संग में पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं तो भक्त लोग हमें भजन क्रिया में लगाते हैं, साधन भक्ति के कार्यों में लगा देते हैं, तो हम भगवान की भक्ति शुरू करते हैं। तो और क्या चाहिए भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए? ना निर्विण है, निर्विण अर्थात जो बहुत इस भौतिक जगत को से घृणा करता है और सोचता है कि मुझे बिल्कुल यहाँ इस संसार और संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। तो ऐसे घृणा की भावना जो है वो उतनी नहीं होनी चाहिए। अति जो है निरासक्ति, अति वैराग्य, ये भी अच्छा नहीं है भक्ति के लिए। ऐसा व्यक्ति जो है फिर ये ज्ञान योग के रास्ते के लिए योग्य बन जाएगा, भक्ति योग के लिए नहीं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं ना भी सकता है, ना अति सकता है या ना अति आ सकता है। और दूसरी ओर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि साधक बहुत ज्यादा इस संसार के वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाता है, आसक्त हो जाता है। यदि बहुत ज्यादा आसक्त है और उसके जीवन में वैराग्य नहीं है, थोड़ा भी वैराग्य नहीं है, तो फिर वो भक्ति योग के लिए अधिकारी नहीं बनता, फिर वो कर्म कर्म के पथ के लिए अधिकारी बन जाता है। तो भक्ति योग ये एक सुवर्ण मध्य है, गोल्डन मीन, बीच वाला रास्ता है, जिसमें न हमारी हमारा वैराग्य अति होता है न भोग अति होता है। हमें मध्यम रास्ते से चलना चाहिए, थोड़ा वैराग्य अवश्य होना है, इसके बिना तो भक्त नहीं होंगे। साथ साथ थोड़े भोग की अनुमति दी जाती है सीमाओं के भीतर, जैसे शास्त्रों में और आचार्यों की कथाओं में, उपदेशों में पाए जाते हैं नियम, उन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए एक नियमावली बनाई है, एक जीवन शैली बनाई है, जिसका पालन करके हम अच्छी तरह से सरल जीवन, ऊंचे विचार का पालन करते हुए भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते रह सकते हैं। वैसे जो इस रास्ते में नहीं होते हैं, सरल जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को नहीं समझते हैं या इसके अनुसार नहीं रहना चाहते हैं, उनको आश्चर्य होता है कि लोग कैसे सरल जीवन जीते हैं। बस आपके पास इतना ही है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, ऐसे भक्तों को पूछते रहते हैं। एक बार हुआ ये कि एक कोई विदेशी व्यक्ति थे, भारत में आए एक साधु से मिलने के लिए। जब वो साधु जो है वो कहीं वृंदावन में रहते थे, अपने कुटिया में वो रहते थे, तो उनके पास वो गए और उनको आश्चर्य हुआ देख के कि इस साधु की कुटिया में कोई सामान ही नहीं था, बस गिने चुने छोटे छोटे चीजें थोड़ी बहुत थी, बस इतना ही था। तो उस अतिथि ने पूछा कि आपके पास कोई सामान नहीं है, आपके पास कोई चीजें नहीं है जिनको कि आप अपना कह सकते हैं। कोई भी चीजें यहाँ दिख नहीं रही हैं आपके कमरे में। तो फिर साधु ने उनसे कहा, आपके पास भी तो नहीं है, आपके पास कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अतिथि हूँ ना, मैं कैसे मेरे घर का सामान सारे ले आऊँ? मैं तो अकेला यहाँ आया हूँ आपको देखने के लिए आया, तो इस समय मेरे पास तो कुछ नहीं है क्योंकि मैं तो अतिथि हूँ। तो साधु ने कहा, मैं भी अतिथि हूँ इस दुनिया में, हम सब अतिथि हैं। जिस तरह से आप मेरे घर में आए हो, आपके घर का सारा सामान लेकर नहीं आए हो आप, आपका टीवी, फ्रिज, सोफा वगैरह, बिस्तर वगैरह लेकर नहीं आए हो मेरे घर में, बस अपने जो कपड़े हैं वो लेकर मेरे पास आए हो क्योंकि आप अतिथि हो। तो उसी तरह से मैं भी एक अतिथि हूँ यहाँ, हम सब अतिथि हैं वास्तव में। तो इसलिए क्या है इकट्ठा करना जो हम साथ में ले जाएंगे। और आपने इंद्रदेव और लोमस ऋषि की कथा तो सुनी होगी कई बार, है ना? एक ऋषि थे लोमस ऋषि, और आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण उनके जीवन की अवधि बहुत लंबी थी, और इतनी लंबी थी कि उनके शरीर पे जितने भी लोम थे, मतलब जो बाल होते हैं ना शरीर के ऊपर, उसको लोम कहते हैं, लोम या रोम। तो जितने भी लोम थे उतने हजारों वर्षों तक उनकी जीवन की अवधि होनी थी। अब इतनी लंबी जीवन की अवधि कल्पना भी नहीं कर सकते। एक साधारण व्यक्ति के शरीर के ऊपर कितने लोम होते हैं इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। तो इंद्रदेव ने देखा कि वो आए इनके पास, एक बार गुजर रहे थे, कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ लोमस ऋषि हैं और ये पेड़ के नीचे रहते हैं, इनके पास कोई घर भी नहीं है। हाँ, तो वो अपने वाहन से उतर के नीचे आए और लोमस ऋषि से कहने लगे कि मुनिवर, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं देवराज इंद्र हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी तैयार करके, निर्माण करके दे सकता हूँ, आपके लिए एक अच्छा सा घर बना सकता हूँ, एक कुटिया बना सकता हूँ। तो फिर लोमस ऋषि ने कहा कि देखिए इंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद है, परंतु तो मुझे ये सब घर वर में समय बिताना नहीं है, क्योंकि देखिए वैसे ही जीवन क्षणभंगुर है, जीवन की अवधि कितनी कम है, और आत्म साक्षात्कार करने के लिए समय कितना कम है, और उसमें ये मैं घर के पीछे, घर के निर्माण के पीछे, ये वो इन चीज़ों के पीछे पड़ा रहूं, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ना कोई समय मिलेगा ना कोई उत्साह बना रहेगा। तो इंद्रदेव सोचने लग गए, मेरे जीवन की अवधि भी पृथ्वीलोक के निवासियों की तुलना में इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि पृथ्वीलोक के निवासी कल्पना नहीं कर सकते, और मेरे जीवन की अवधि की तुलना में लोमस ऋषि की जीवन की अवधि इतनी ज्यादा है कि मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। और अब ये ऐसे सोच रहे हैं कि जीवन की अवधि कितनी कम है, भगवान की भक्ति करने के लिए समय कम है। तो उनके होश ठिकाने आगे, सोचने लगे कि मुझे भी ये सब नंदन कानन वन में रमण करना, ये सब इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे भी सेवा करनी चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए तीव्रता से। तो खैर, ये सारे जो उदाहरण हैं, जैसे हमने पहले कहा, हम ऐसे ऋषियों की नकल नहीं कर सकते हैं, परंतु इनसे कुछ अनुसरणीय बातें हैं। अनुकरण नहीं करना चाहिए लेकिन अनुसरण करना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए, कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, और अपने जीवन के अवस्था में जो हम कुछ इससे सीख सकते हैं उसको अपना सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं, वो करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी कभी कभी 2-3 दिन में एक बार कुछ छाछ थोड़ा बहुत पी लेते थे, कभी वो भी भूल जाते थे लेना। कभी हम ऐसे नकल करें रघुनाथ दास गोस्वामी की तो हम मर ही जाएंगे। तो इसलिए हमें एक एक मध्यम रास्ता, एक संतुलन बनाए रखना है। परंतु ये सुवर्ण मध्य क्या चीज है इसको हमें समझ लेना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और हमें याद रखना चाहिए इतनी चीज़ों को हमें इकट्ठा करना चाहिए। एक बार मायापुर में कोई सत्संग एक कार्यक्रम हो रहा था इसी विषय पर, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन ऊंचे विचार। तो कई प्रवक्ता थे तो मुझे भी बुलाया गया था, तो मैंने भी थोड़े समय कुछ 15-20 मिनट कुछ कहा। और फिर किसी ने प्रश्न किया कि हम कैसे जान सकते हैं कि कितना काफ़ी है हमारे लिए, पर्याप्त कितना है हमारे लिए। तो वैसे देखा जाए तो अब जितना आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए। जैसे बलि महाराज 3 कदम जमीन से संतुष्ट थे, हालांकि बलि महाराज ने प्रलोभन देने का प्रयास किया कि मैं तुम्हें एक सारा लोक दे सकता हूँ इत्यादि, परंतु तो वामन देव स्थिर रहे अपने सरलता में। तो उसी तरह से हमें संतुष्ट होने के प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारे पास इस समय है ठीक है, जो ईमानदारी की कमाई से, जो ना अति परिश्रम करके ना आलस करके, बीच के रास्ते को अपनाकर जो धन हमें प्राप्त हो जाए, हम कर सकें, उतने से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ना आलसी होना चाहिए ना अति परिश्रमी होना चाहिए। आलसी बनने का परिणाम ये होगा कि फिर हम भगवान को भूल जाएंगे, साधना भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, बाद में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी हमारे जीवन में। अति परिश्रम करने से भी तनाव बढ़ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, और फिर उस समय भी भक्ति के लिए समय नहीं रहेगा, भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन ऊंचा विचार, ये बहुत आवश्यक है। तो अभी ये देखिए, एक सूत्र मैं आपको बता सकता हूँ इसके लिए, जो मैंने उस समय उस प्रवचन में कहा था, वो ये है। यदि आपके मन में कोई विचार आए कि कोई इच्छा हुई किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या ये वस्तु वास्तव में आवश्यक है मेरे लिए? सोचिए थोड़ा बहुत उसके बारे में। और यदि उत्तर आया मन में कि हाँ आवश्यक है, ठीक है, तो फिर दूसरा प्रश्न कीजिए। दूसरा प्रश्न है, क्या यह वस्तु वास्तव में वाकई आवश्यक है हमारे लिए? उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न कीजिए, क्या ये वस्तु वास्तव में वाकई हमारे लिए आवश्यक है क्या? तो यदि उत्तर इस बार भी हाँ आए तो फिर खरीद लीजिए उसके, या प्राप्त कर लीजिए। लेकिन तीनों प्रश्नों के बाद एक भी बार कहीं ना उत्तर आ जाए तो फिर भूल जाइए। इस तरह से अपने अपने आप की परीक्षा में करते करते रहना चाहिए, ताकि हम ये ना सोचे, क्योंकि इसकी इन आशाओं की कोई सीमा नहीं रहती है ना। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समय है, तरह तरह के नए नए मॉडल उपलब्ध होते हैं बाजार में, तो लोग इसके पीछे भागते हैं। नए नए कपड़े आते हैं, नए नए फैशन होते हैं, नए नए हेयर स्टाइल होते हैं, नए चीजें, नए चीज, सब चीज नए नए नए, तो हम इनके पीछे पीछे भागते हैं। तो हमें अपने आप को ये सवाल करना चाहिए। और अंत में मैं श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के 22वें अध्याय के 24वें अध्याय से कुछ, 24वें श्लोक से कुछ पढ़ना चाहूंगा। इस अध्याय में चतुष कुमार महाराज पृथ्वी को उपदेश दे रहे हैं। इस श्लोक की चर्चा करने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है इस समय, परंतु चार कुमार महाराज पृथ्वी को ये बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। और इस दौरान ये निरीह या निरीह शब्द का प्रयोग करते हैं, और निरीह शब्द का अर्थ श्री प्रभुपाद जी यहाँ देते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हुए। तो जो व्यक्ति साधना भक्ति कर रहा है उसे चाहिए कि वो सादा जीवन व्यतीत करे। और इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। तो मैं इसको पढ़ूंगा, जरा आप ध्यान से सुनिए। भक्त की एक अन्य विशेषता है निरीहया, अर्थात सादा जीवन। निरीहा का अर्थ है सरल अथवा विनीत, अनुकरण करना चाहिए। भक्त के लिए सादा जीवन उच्च विचार शोभनीय है, उसे उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितने से शरीर भक्ति कर सके। आवश्यकता से अधिक न तो खाए और न सोए, वह जिंदा रहने के लिए भोजन करे न कि भोजन करने के लिए जिंदा रहे। वह प्रतिदिन 6-7 घंटे सोए, यही भक्ति भक्तों के लिए नियम है जिनका पालन होना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक 3 प्रकार के ताप सताते रहेंगे, हम उनसे बच नहीं सकते। हमें कभी कभी नव दीक्षित भक्तों के पत्र प्राप्त होते हैं, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अगले जो गुण है इसकी बात करते हैं, जो द्वंद्व तितिक्षया की सहनशील होना, द्वंद्वों में सहनशील होना। जो संसार में द्वंद्व रहते हैं ना, गर्मी ठंडी दुख सुख इत्यादि, तो इन द्वंद्वों को कैसे सहन करना चाहिए, द्वंद्व तितिक्षया। तो अभी निरीह या का वर्णन करके अब वो सीधे द्वंद्व तितिक्षया के पास आए हैं। पुनः पढ़ता हूँ इस वाक्य को। हमें कभी कभी नवदीक्षित भक्तों से पत्र प्राप्त होते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति करते रहने पर भी वे बीमार क्यों पड़ते हैं। उन्हें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि उन्हें सहिष्णु बनना चाहिए। द्वंद्व तितिक्षया, यह संसार द्वैतपूर्ण है। मनुष्यों को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह बीमार हो गया तो वह कृष्ण भावनामृत से भ्रष्ट हो गया है। कृष्ण भक्ति बिना किसी विरोध के या बाधा के चलती रहती है। अतः श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 2अध्याय के 14वें श्लोक में यह उपदेश दिया है, तामस्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तुम सारी अड़चनों को सहो, तुम कृष्ण भक्ति के कार्यों में स्थिर हो। तो आजकल हम यही देख रहे हैं ना, इतने सारे बीमारियां हो रही हैं, और भक्तों के मन में भी ये प्रश्न उठते हैं कि भक्तों को ऐसी बीमारियां क्यों होती हैं। जैसा कि हम पिछले दिनों में भी चर्चा कर रहे थे कि दुनिया में तो ऐसे होना ही है, बीमारियां तो आनी ही आनी है। एक बीमारी हो ना तो दूसरी बीमारी, दूसरी चली गई तो तीसरी आएगी। कोई व्यक्ति बीमारियों से मुक्त नहीं है, तो इसलिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि भक्तों को या हमें बीमारियां क्यों होती हैं, या खास करके इस समय ऐसी बीमारी हमें क्यों क्यों आ गई। अब तो आ गई, बस सहन कर लेना चाहिए। और सहन करते करते क्या करना चाहिए, भगवान के भक्ति में हमें उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये संभावना रहती है कि ऐसे समय जबकि सारी दुनिया में एक नकारात्मक भाव है, सभी लोग उदास पड़े हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, ये संभव है कि इस वातावरण का प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर भी पड़े और हम भी थोड़ा बहुत निराश हो जाएं, चिंतित हो जाएं, भक्ति में हमारा उत्साह कम हो जाए, हो सकता है श्रद्धा भी कम हो जाए भगवान में। लेकिन ऐसे होने नहीं देना है हमें, हमेशा सकारात्मक भाव रहना है। जो श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य कहते हैं, उनको अच्छी तरह से हमें सुन लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए कि ये सब कष्ट हमारे जीवन में आएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। तो इसलिए बस सहन करना है और भक्ति करते करते रहना है, साथ साथ में सावधानी भी रखनी है। और जैसे मैंने प्रवचन की शुरुआत में कहा कि कृपया जब भी आप घर से बाहर जाएंगे, आप कोई कपड़ा अच्छी तरह से पहन के जाइए, अच्छा कोई मास्क पहन के जाइए। और मास्क यदि आपको ठीक से नहीं मिले, उपलब्ध नहीं है, तो खुद अपना मास्क बनाइए, भले वो बिल्कुल परिपूर्ण मास्क न भी हो, लेकिन कुछ तो है ना। और हमने ये पढ़ा कि भारत में कई ऐसे लोग मास्क बेच रहे हैं जिनमें कोई स्वच्छता का पालन नहीं किया गया है, तो उनसे जरा बच के रखिए। जो केवल अधिकृत मास्क हैं उनको ही अधिकृत स्थानों से ही खरीदिए, और यदि उपलब्ध नहीं है तो अपना मास्क बना लीजिए। याद रखिए, जब भी आप घर से बाहर जाएंगे आप एक कपड़ा पहन के जाइए, और कभी कभी हो सके तो घर के अंदर भी करना पड़े, उसमें भी हिचकिचाइए नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है ताकि एक दूसरे में ये बीमारी नहीं फैले। और हाथ साबुन से धोना चाहिए, और अन्य जो स्वच्छता के नियम हैं उनका पालन कीजिए, ठीक है? तो और उत्साह से बस आप आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिए, इस समय प्रवचन काफ़ी लंबा चल गया, तो 6 बज गए मेरे ख्याल से ना। तो एक या दो प्रश्न लेंगे, ठीक है?
We are here all. We hear all the time the constitution is the solution to all the problems. We only have to accept the constitution directly, and we no need to worry about so many institutions. Not to remove so many different parts and going into the Bhagavad Gita. If this is the case, why Lord Buddha, Shankaracharya, etc., also many pseudo philosophers came before Chaitanya Mahaprabhu. If Chaitanya Mahaprabhu would have come early, then so many Vaishnavas would have passed in the present scenario. They would have spent so much time repeating such philosophy. Please throw some light on the timing of Mahaprabhu's incarnation.
काफी लंबा प्रश्न है। संक्षिप्त में प्रश्न ये है कि बुद्ध देव आए जो कि भगवान के अवतार हैं, फिर शंकराचार्य आए जो भगवान द्वारा शिवजी द्वारा भी भेजे गए थे, उन्होंने कई अपसिद्धांतों का प्रचार किया, तो ऐसे करने की आवश्यकता क्या थी? वैसे संक्षेप में बताऊं तो जब बुद्ध देव आए तो उस समय काफी वेदों के नियमों का दुरुपयोग हो रहा था। पशु यज्ञ के नाम पे पशु हत्या हो रही थी और लोग मांस खाना चाहते थे। तो इस मांसाहार को बंद करना, इस पशु हत्या को बंद करने के लिए भगवान ने बुद्ध देव का अवतार लिया, तो ये एक विशेष कारण था। जहां तक शंकराचार्य की बात है, वो वेदों के अधिकार को, वेदों के महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए आए, जबकि बुद्ध देव आए थे, बुद्ध देव ने वेदों को नकारा, क्योंकि वेदों में ही यज्ञ आदि के जो अनुष्ठान बताए गए हैं। तो इसलिए ये आवश्यक था कि बौद्ध के जो अंदर जो एक वेदों को नकारा गया है, उसका कोई प्रतिरोध हो, उसका कोई खंडन हो, और पुनः वेद शास्त्रों के की स्थापना हो जाए। इसलिए शंकराचार्य आए और उन्होंने वेद, उपनिषद, वेदांत इत्यादि इन वैदिक ग्रंथों की स्थापना की, परंतु उन्होंने मायावाद दर्शन का प्रचार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म से सीधे भक्ति में आना मुश्किल था। फिर धीरे धीरे से सारे वैष्णव आचार्य आए, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, और फिर चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने फिर भक्ति का आंदोलन, भक्ति की क्रांति प्रारंभ की, ठीक है? और एक प्रश्न,
rather than in the form of
प्रश्न ये है कि खास करके ऐसे समय में जब विकट परिस्थिति है और इतनी समस्या दुनिया में चल रही है, लोग पीड़ित हैं, लोगों के पास कई जगह भोजन नहीं है, तो हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए या हमें कृष्ण भावनामृत के लिए देना चाहिए? तो हम कहेंगे दोनों कीजिए, एक साथ में दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे हमारे यहाँ भारत में भी कई इस्कॉन मंदिरों के द्वारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है, कृष्ण प्रसाद का वितरण, तो हम लोगों ने भी ऐसे यहाँ हमारे मंदिर से बेलगाम में जब यहाँ बहुत बाढ़ की समस्या हुई थी तो उस समय हम लोग कृष्ण प्रसाद का वितरण करते थे, तो बहुत सारे लोगों को कृष्ण प्रसाद पाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ये आध्यात्मिक एक सेवा हो गई, भगवान कृष्ण की सेवा हो गई, और साथ साथ में लोगों की सेवा भी हो गई, उनका पेट भी भर गया और भक्ति में भी वो आगे बढ़े हैं, वो स्वीकृति उनको मिल गई कृष्ण प्रसाद पाने के लिए। तो इसी तरह से इस समय में भी कई ऐसे हमारे मंदिर हैं भारत में जो कि ऐसे कृष्ण प्रसाद जगह जगह बांट रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी अभी शुरू किया है, एक 3-4 दिन पहले, यहाँ जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बेचारे दिन रात वो लोग घूमते रहते हैं सारे सड़कों में, कभी छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, नींद नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, तो इतने लोग ये हम सब की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं ना। तो अभी वो लोग सोच रहे थे, आके उन्होंने पूछा मंदिर में, आपके हमारे पुलिस के अधिकारियों को आप खिला सकते हैं क्या? तो हमारे भक्त लोग तैयार हो गए, और अभी पुलिस के लोगों के लिए 70 जो अधिकारी और पुलिस था उनके लिए हमारे यहाँ से प्रसाद जाता है, और वो लोग इतने खुश हैं, इतने संतुष्ट हैं, क्योंकि उनको पौष्टिक स्वादिष्ट आहार मिल रहा है, सात्विक आहार है, और साथ साथ ही कृष्ण प्रसाद है, तो उससे हृदय का भी शुद्धिकरण होता है। जो उनमें से जो प्रमुख थे, जो इंस्पेक्टर थे, वो इतने खुश हुए, बोले कि नहीं तो हम कहीं बाहर किसी होटल में हमें देना पड़ता, और वो लोग किस तरह का भोजन खाते हैं, क्या अंदर मिलाएंगे, इसके कुछ कहना नहीं। अभी आपके यहाँ से आ रहा है भोजन, तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से हमारा फायदा होगा। तो इस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे समाज सेवा के कार्यों को कैसे कृष्ण भावनामृत में जोड़ा जाए, खास करके ऐसे समय। तो लोग इसको देख कर फिर आकर्षित होते हैं कृष्ण भक्ति की ओर, और समाज में भी भला होता है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ख्याल रखिए, और आपको कल हम मिलेंगे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।